21 जून दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच तनातनी में कोई कमी नहीं। केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन कर मोदी पर फिर हमला बोला।
नरेंद्र मोदी जी मेरे को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ना मैं झुकने वाला हूं, ना मैं डरने वाला हूं।
देखेंगे न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में शामिल होने के पाकिस्तान के दावे में कितना है दम।
आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई रिपोर्टेड एक्सीडेंट नहीं है इन रनिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन।
रूसी एथलीट नहीं भाग ले पाएंगे रियो ओलंपिक में। लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार मोहनलाल शर्मा से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कथित टैंकर घोटाला मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला है। दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में केजरीवाल ने कहा, मोदी सरकार छापे से, धमकियों से और झूठे मामले दर्ज कराकर डरा रही है, लेकिन वो किसी से डरते नहीं हैं। लगभग 400 करोड़ रुपए के कथित टैंकर घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री शीला दीक्षित, पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और मौजूदा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग को विवादों से दूर रखना चाहिए और इसे खुद से जुड़ने का एक जरिया मानना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चंडीगढ़ में आयोजित एक समारोह में वहां मौजूद हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। भारत के कई राज्यों की राजधानियों और प्रमुख शहरों में भी इसी तरह के आयोजन किए गए हैं। भारत के बाहर भी कई देशों में भारतीय दूतावासों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। अमेरिका में बंदूकों पर नियंत्रण करने संबंधी चार उपायों को अमेरिकी सेनेट ने खारिज कर दिया है। सेनेट में ये प्रस्ताव फ्लोरिडा के नाइट क्लब में हुए उस हमले के बाद लाया गया था जिसमें 49 लोग मारे गए थे। अमेरिकी सेनेट के इस रुख पर रिपब्लिकन सीनेटर क्रिस मर्फी ने कहा,
On this note, the yeas are 53, the nays are 47, three-fifths of the senators duly chosen.
क्रिस मर्फी कह रहे थे, मेरा मानना है जितना सदमा हमें अपने किसी करीबी को खोने पर लगता है उससे ज्यादा सदमा तब लगता है जब हम ये देखते हैं कि जिन्हें हमने अपने देश को चलाने के लिए चुना है उन्हें किसी बात की कोई परवाह ही नहीं है। रिपब्लिकन सीनेटर क्रिस मर्फी के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। जॉर्डन से मिल रही खबरों के मुताबिक सीरिया की सीमा के पास एक कार के जरिए बम धमाका किया गया है जिसमें कम से कम 6 सीमा प्रहरी मारे गए। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि धमाके के चलते कई सैनिक घायल हुए हैं। अधिकारियों का दावा है कि ये कार सीरिया की तरफ से सीमा में दाखिल हुई थी। रुकबान इलाके में हमला उस जगह पर किया गया जहां शरणार्थियों के लिए एक अस्थायी शिविर बनाया गया है। इसमें हजारों की तादाद में सीरियाई शरणार्थी रह रहे हैं। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला ने कहा है कि वो इस हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत ने कांगो के पूर्व राष्ट्रपति जीन पियरे बेम्बा को मानवता के विरुद्ध अपराधों और युद्ध अपराधों के लिए 18 साल कारावास की सजा सुनाई है। जीन पियरे बेम्बा को इस बात का दोषी पाया गया कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिकन में वर्ष 2002 और वर्ष 2003 के दौरान उनके सैनिक लोगों की हत्या कर रहे थे, महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें रोकने में विफल हुए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने रियो ओलंपिक में शामिल होने के लिए रूसी खिलाड़ियों पर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन के प्रतिबंधों का समर्थन किया है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। एंटी करप्शन ब्यूरो ने 400 करोड़ रुपए के कथित वाटर टैंकर घोटाले के संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। हालांकि प्राथमिकी में दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों को आरोपी नहीं बनाया गया है। घोटाला तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में हुआ बताया जाता है, मगर अरविंद केजरीवाल पर आरोप है कि उन्होंने 11 महीनों तक घोटाले की फाइल को दबाए रखा। प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रावी।
एंटी करप्शन ब्यूरो की प्राथमिकी में नामजद किए जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ हमले तेज कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल ने जल बोर्ड के घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को बचाने का प्रयास किया है। सोमवार को एंटी करप्शन ब्यूरो ने वाटर टैंकर घोटाले के संबंध में औपचारिक रूप से प्राथमिकी दर्ज कर ली। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद ब्यूरो के प्रमुख मुकेश मीना का कहना था,
एक कंप्लेंट विजेंद्र गुप्ता जी से आई थी, उस कंप्लेंट में अरविंद केजरीवाल जी का नाम था और एलिगेशंस थे कि प्रेजेंट सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है और उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया है। तो जो अगर इरेगुलरिटीज पहले वाली सरकार ने है और अगर उसको फिर कंटिन्यू करते तो दोनों लायबल हैं, इसलिए दोनों के खिलाफ हमने दोनों सरकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत और आईपीसी के तहत मुकदमा।
वहीं प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपनी भड़ास निकाली। उनका कहना था कि इस तरह मामला दर्ज कर नरेंद्र मोदी उन्हें डराना चाहते हैं।
मोदी जी ने बाकी सबको रेड करा के झूठे केस करके एफआईआर करके डरा दिया, धमका दिया। अकेला मैं खड़ा हूँ चट्टान की तरह जो मोदी जी के कुकर्मों के खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ और उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूँ। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी मेरे को डराना चाहते हैं, धमकाना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आप जो मर्जी कर लीजिए, ना मैं झुकने वाला हूँ, ना मैं डरने वाला हूँ और ना मैं टूटने वाला हूं।
अरविंद केजरीवाल ने पूरे संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री को ही अपने निशाने पर रखा और कहा,
मैं उनको कहना चाहता हूं मोदी जी, मैं राहुल गांधी नहीं हूं जिसको आप डरा लोगे, मैं सोनिया गांधी नहीं हूं जिसको आप झुका लोगे, मैं रॉबर्ट वाड्रा नहीं हूं जिससे आप सेटिंग कर लोगे। मर जाऊंगा लेकिन बेईमानी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे आपको जितनी रेड करानी है रेड करा लो, सीबीआई, एसीबी, दिल्ली पुलिस, सारी एजेंसीज आपके पास हैं। जितनी रेड करानी है आप रेड करा लो, जितनी एफआईआर करानी है आप एफआईआर करा लो। आप हमको डरा नहीं सकते, आप हमको झुका नहीं सकते, आप हमारी आवाज बंद नहीं कर सकते।
दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए दलील दी कि जो पानी के टैंकर उनकी सरकार ने लिए थे वो अच्छे हैं जो आज भी काम कर रहे हैं।
आई एम एब्सोल्युटली क्लियर दैट हमारी कॉन्शियंस एब्सोल्युटली क्लीन है, जो प्रोसीजर्स है फॉलो किए गए, आज भी वो टैंकर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, अच्छे टैंकर्स है, वो दिल्ली के लोगों की सेवा थी, घोटाले का कहां वहां पर प्रश्न आ जाता है।
भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि 14 जुलाई 2015 को ही जल मंत्री कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर जांच कराने की मांग की थी, जो नहीं हुआ। संगठन के प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना था,
शीला जी के साथ साथ अरविंद केजरीवाल जी को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये जानते हुए कि इसमें इतना बड़ा घपला हुआ है, उन्हीं एजेंसीज के टेंडर को जो कंटिन्यू रखा गया है वो अपने आप में दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल जी भी इसमें सम्मिलित है, और आज उनको जवाब देना पड़ेगा। जब उनसे जवाब मांगी जाती है और जब उनके मंत्रीगण पकड़े जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से अरविंद केजरीवाल जी ध्यान भटकाने का प्रयास करते हैं और इस प्रकार का बयान देते हैं।
वाटर टैंकर घोटाले का मामला हो या फिर संसदीय सचिवों की नियुक्ति, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच चल रही रस्साकशी अब और भी ज्यादा खराब रूप इख्तियार करती जा रही है। सलमान रावी, बीबीसी दिल्ली।
आज भारत समेत पूरी दुनिया के कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन हुआ। हालांकि पिछले यानी पहले योग दिवस का माहौल भारत में तो नहीं दिखा, लेकिन कम से कम पूरा सरकारी महकमा सुबह से ही योग से जुड़ा रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां इस बार दिल्ली के बजाय चंडीगढ़ को अपने आसन जमाने के लिए चुना, तो उनके मंत्रिमंडल के करीब 50 सहयोगी देश के दूसरे हिस्सों में योग वाले सामूहिक कार्यक्रम में शामिल हुए। भारत सरकार के अनुसार दुनिया भर में करीब 1,00,000 ऐसे आयोजन की उम्मीद रही है। हालांकि पिछले साल तमाम सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में योग कराए जाने की आलोचना भी हुई थी और कुछ लोगों ने कहा था कि इस प्रक्रिया से कुछ धर्म या संप्रदाय के लोग आहत हो सकते हैं। शायद यही वजह रही कि आज के कार्यक्रम से पहले अपने संबोधन में नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि योग कोई धार्मिक मान्यता नहीं है और इस पर विवाद नहीं होना चाहिए। बहरहाल योग दिवस के इस अवसर पर हमारे सहयोगी नितिन श्रीवास्तव ने विश्वविख्यात आयंगर स्कूल ऑफ योग की दिल्ली संचालक और प्रशिक्षिका निवेदिता जोशी से बात की और पूछा कि आखिर रोजमर्रा की जिंदगी में कितना अनिवार्य है योग।
रोज की जिंदगी में उतना ही आवश्यक है जितना सांस लेना, क्योंकि योग जीने की एक कला है, जीवन शैली की एक कला है। तो जिस तरह से आप हर रोज़ नहाते हैं, हर रोज़ अपने को स्वच्छ रखते हैं, ऐसे ही हर रोज़ आपको योगाभ्यास करना चाहिए। पर जब मैं कहती हूँ कि योगाभ्यास करना चाहिए तो इसका मतलब है कि आपको इसके सारे सोपानों का, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि तो बड़े एडवांस लेवल्स हो गए, लेकिन यम, नियम, आसन, प्राणायाम तो ज़रूरी अभ्यास करना, क्योंकि वही हमारे हाथ में सबसे पहले है जिस पे हम कुछ काम कर सकते हैं।
पिछले कुछ वर्षों में भारत में खास तौर से योग को काफ़ी पॉपुलर होते देखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं कि बहुत लोकप्रिय हो रहा है। उसमें कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो नंबर ऑफ ट्रेनर्स हैं वो अब जगह जगह मिल जाते हैं, या बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर योग दिवस मनने लगा है, बड़ी बड़ी LCD स्क्रीन्स पर इंस्ट्रक्टर्स सिखा रहे होते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग योग कर रहे होते हैं, कितना कितना मुनासिब है इस तरह से योग का सीखना या सिखाना?
प्रचार के लिए तो ठीक है, लेकिन सीखना सिखाना ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति की इंडिविजुअल कुछ अपेक्षाएं होती हैं, शरीर की भी और मन की भी। तो अगर आप इतने मास में सिखाएंगे, प्रचार करना एक अलग बात है, पर अगर सिखाएंगे तो उनमें रिफाइनमेंट आ ही नहीं सकता है। और सबसे पहली चीज़ है आसनों की हम बात कर रहे हैं जितना मैं समझ पा रही हूँ, उसमें उनको अलाइन करना इंसान को, क्योंकि जब डिसअलाइनमेंट होता है तभी एनर्जी डिसअलाइंड होती है और तभी आपको तमाम प्रकार की बीमारियां शुरू होती हैं। तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक लिमिटेड नंबर पे काम करें, ताकि उसमें आपके हाथ में कंट्रोल हो, आप एक एक को इंडिविजुअली को देख सकें। या फिर आप साधक हों गुरुजी के ऑर्डर के, अगर वो नहीं है तो आप फिर उतना ही कंट्रोल लोग लीजिए, अगर आप उन्हें सिखा रहे हैं कि इंडिविजुअली पे आप ध्यान दे सकें। तो जब हम सिखाते हैं या पढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि किसकी कौन सा हिस्सा स्पाइन का कहाँ जा रहा है, किसकी कौन सी बोन ट्विस्ट हो गई है, किसका शोल्डर ब्लॉक्ड है, अभी तमाम चीज़ें हैं जिसको आप इंडिविजुअली देखते हैं, फिर आप उनको इम्प्रोवाइजेशन बताते हैं कि आप इस पोज को कैसे पहुंचेंगे। तो इसलिए मेरा अपना मानना यह है पर्सनल कि सिखाने और प्रचार में दो फर्क चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से भारत में प्रचार प्रसार की अब आवश्यकता नहीं है, हमको तो योग के बारे में वैसे ही पता है, हर घर को पता है, हर इंसान को पता है भारत में। अब ज़रूरत इस बात की है कि सही ढंग से किसी अच्छे गुरु के सानिध्य में लोग उसका अभ्यास करें।
आजकल मैं देखता हूँ जगह जगह सेंटर खुल रहे हैं, या अखबारों में इश्तिहार आते हैं कि डायबिटीज़ या मधुमेह के शिकार हैं तो फलाने योग गुरु के पास आइए, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो फलाने के पास आइए। तो क्या आपको लगता है कि ये चीज़ें, मतलब ये इसके लिए कितनी, मुझे लगता है कि बहुत प्रोफेशनली ट्रेन जैसे आपकी तरह के ट्रेनर्स हैं जो मतलब इतना करके यहाँ पहुँचे, उसके बाद ही वो हो सकता है, या
हम लोग गलत फहमी के शिकार हो गए और हम बाय प्रोडक्ट पर इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि अल्टीमेट गोल तो निगेशन पे चला गया है। अल्टीमेट गोल तो ये है कि आप अपने मन और बुद्धि का ऐसे सामंजस्य लाएं कि आप फाइनली उस आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ें जो मनुष्य का जीवन का धर्म है। लेकिन उस रास्ते में चलते समय आपकी सेहत में सुधार आता है, और वो सेहत मानसिक और शारीरिक दोनों होती है, और इस तरह से लोगों ने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया है, जो मेरे ख्याल से योग के बड़े चित्र को छोटे में काटना कोई बड़ी अच्छी
बात नहीं। क्या ये बात आम जनमानस को या आम आदमी को बताई जानी या पता चलनी जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत प्रोफेशनली ट्रेन्ड इंस्ट्रक्टर्स या गुरुओं से नहीं सीख रहे हैं, हज़ारों की तादाद ने मैट बिछा कर LCD स्क्रीन या TV देख कर रहे हैं, तो वो नुकसानदेह भी हो सकती है?
हाँ हाँ बिल्कुल। देखिए योग जो है वो इंस्ट्रक्टर्स के जरिए नहीं सीखा जा सकता है, लेट्स करेक्ट आर टर्मिनोलॉजी, ये एक साधना का विषय है, तो साधक ही दूसरे अभ्यासी को सिखा सकता है। जब आप इंस्ट्रक्टर कहते हैं तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति को सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना आता है, लेकिन अब क्योंकि हर चीज़ें बदल गई हैं और बहुत जल्दी लोग चीज़ हासिल करना चाहते हैं, तो एक कहीं किसी किसी योगा सेंटर में एक महीने में टीचर ट्रेन कर देते हैं, किसी योगा सेंटर में कुछ एक साल में ट्रेन कर देते हैं, पर ये तरीका नहीं है।
निवेदिता जोशी से बात कर रहे थे नितिन श्रीवास्तव। बॉलीवुड स्टार सलमान खान एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। अपनी आने वाली फिल्म सुल्तान का प्रमोशन कर रहे सलमान ने बयान दिया कि शूटिंग के दौरान उन्हें खासी मेहनत करनी पड़ी, इसके बाद वो किसी बलात्कार पीड़ित महिला जैसा अनुभव कर रहे थे। उनके इस बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें नोटिस भेजकर 7 दिन में जवाब मांगा है। राखी शर्मा की रिपोर्ट।
बॉलीवुड स्टार सलमान खान के विवादों की लंबी फहरिस्त में एक नया विवाद जुड़ गया है। इस बार सलमान पर अपनी आने वाली फिल्म सुल्तान की शूटिंग के अनुभव की तुलना रेप से करने का मामला गर्मा गया। मुंबई में फिल्म सुल्तान का प्रमोशन कर रहे सलमान खान से जब BBC की पत्रकार सुप्रिया सोगले ने सवाल किया कि फिल्म में सलमान के किरदार के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी, तो उन्होंने जवाब में कहा,
कुश्ती लड़ने में कितनी मेहनत लगी आपकी?
If I've got to pick up 120 kilo person
110 किलो वजन वाले व्यक्ति को मुझे 10 बार उठाकर पटकना था। कुश्ती में ये एक दो बार ही होता है, पर मुझे 10 बार कैमरों के लिए 5 अलग अलग एंगल से शूट करना पड़ता था। 6 से 7 घंटों की शूटिंग में या तो मैं किसी को उठाकर पटक रहा होता था या वो मुझे। मैं शूटिंग के बाद जब रिंग से बाहर निकलता था तो बलात्कार की शिकार एक महिला की तरह महसूस करता था।
सलमान के इसी बयान की जमकर आलोचना हो रही है। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली कार्यकर्ता कविता कृष्णन का मानना है कि सलमान खान का बयान हमारे समाज की सोच सामने लाता है।
मैं मानती हूँ कि ये सलमान खान का जो बयान है ये बलात्कार को बहुत हल्का कर देता है और बलात्कार को लेकर के एक मजाकिया तरीके से बोलना वो इसी का एक उदाहरण है और मैं मानती हूँ कि ये गलत है। और मैं ये भी याद दिलाना चाहती हूँ कि सलमान खान ऐसा किए हैं इसलिए नहीं कि वो सलमान खान होते हुए कोई बहुत स्पेशल रूप से इनसेंसिटिव है, बल्कि इसलिए किए हैं क्योंकि हमारे समाज में इस तरह के कॉमेंट्स व्याप्त हैं।
वहीं सलमान के समर्थन में बोलने वालों की भी कमी नहीं है। उनके साथ 2008 में फिल्म युवराज बनाने वाले निर्देशक सुभाष घई का मानना है कि 50 वर्षीय सलमान ने ये बात बचपने में कही है।
आई वुड से कि इट इज वेरी इंटरेस्टिंग और अ पर्सन हु ट्रांसलेट्स।
ये काफी असंवेदनशील है कि सलमान के बयान को इस तरह से पेश किया गया। उन्होंने सिर्फ शूटिंग के दौरान अपने पीड़ादायक अनुभवों को साझा किया। रेप शब्द का इस्तेमाल उन्होंने रूपक के तौर पर किया। वो एक बच्चे हैं, मैं उन्हें जानता हूँ, वो महिलाओं की इज्जत करते हैं।
इस मामले पर सलमान के पिता सलीम खान ने ट्वीट करते हुए सलमान को माफ करने की अपील की है। सलीम खान ने ट्वीट किया, बेशक सलमान ने जो कहा वो गलत है, जो तुलना की, जो मिसाल दी, जो संदर्भ दिया उसका उद्देश्य गलत नहीं था। इस मुद्दे को तूल न देने की अपील करते हुए उन्होंने लिखा कि इंसान से गलती हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर हमें अपनी अपनी दुकान एक गलती पर नहीं चलानी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय महिला आयोग सलमान के बयान को नजरअंदाज करने के मूड में नहीं नजर आ रहा। उन्होंने सलमान को नोटिस भेजकर 7 दिन में उनके बयान का जवाब दाखिल करने को कहा है। वैसे इस साल सलमान खान फिल्मों से ज्यादा विवादों की वजह से चर्चा में रहे हैं, फिर चाहे उनका हिट एंड रन केस से बरी होना हो या फिर रियो ओलंपिक का अम्बेसडर बनना। लगता है कि सुल्तान को लोगों का दिल जीतने के लिए अब कुछ नए दाव पेच सीखने होंगे। राखी शर्मा, BBC हिंदी।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फदल के साथ। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय विषय। जॉर्डन में सीरिया से सटे सीमा इलाके में एक कार बम धमाके में सीमा सुरक्षा बल के 6 जवानों की मौत हो गई। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने प्रण किया है कि वो इस हमले का बदला जरूर लेंगे। सेना के अधिकारियों का कहना है कि सीमा पार सीरिया की जमीन से हुए इस हमले में कई जवान घायल भी हुए हैं। सुदूर उत्तर पूर्व रुकबान इलाके में एक अस्थायी शरणार्थी शिविर के बाहर यह हमला हुआ जहां लाखों सीरियाई शरणार्थियों ने पनाह ली हुई है। BBC संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे के साथ अमर शर्मा।
जॉर्डन के उत्तर पूर्व में स्थित रुकबान इलाके में कार में रखे बम में धमाका हुआ। जॉर्डन टेलीविजन में इस खबर को प्रसारित किया गया।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नशरतु अलअखबार मिन अत-तेलीविजन अल-अर्दनी। صرح مصدر مسؤول في القيادة।
जॉर्डन की सेना में एक सूत्र ने बताया कि सुबह 5:30 बजे रुकबान में सीरियाई शरणार्थी शिविर के नजदीक बालू के टीले में विस्फोटकों से भरी एक कार में धमाका हुआ। धमाके में जॉर्डन की सेना के कई जवान शहीद और कई घायल हो गए। कई हमलावर वाहनों को नष्ट कर दिया गया है। घटना के बारे में पूरे ब्यौरे के साथ बयान बाद में जारी किया जाएगा।
अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि हमला किसने किया है, लेकिन खुद को जिहादी संगठन कहने वाले इस्लामिक स्टेट ने धमकी दी थी कि वो जॉर्डन की सीमा को ध्वस्त कर देंगे। इस्लामिक स्टेट के खिलाफ लड़ाई में अमरीकी नेतृत्व वाली गठबंधन में जॉर्डन शामिल है और इसने सीरिया में चरमपंथियों पर हवाई हमले भी किए हैं। सीरिया के साथ साल 2011 में शुरू हुए संघर्ष के बाद जॉर्डन में ये पहला हमला हुआ है जिसमें सेना की एक चौकी के नजदीक विस्फोटकों से भरे वाहन को उड़ा दिया गया। सेना ने अपने बयान में कहा है कि इस धमाके में सीमा सुरक्षा बल और नागरिक सुरक्षा दस्ते के जवानों की मौत हुई है। अपने बयान में सेना ने यह भी कहा है कि इस तरह की आपराधिक वारदात के बाद चरमपंथ और चरमपंथियों की विचारधारा से लड़ने के उनके मजबूत इरादे और बुलंद होंगे, भले ही चरमपंथियों के इरादे कुछ भी हों। इस महीने की शुरुआत में जॉर्डन की राजधानी अम्मान में फलस्तीनी शरणार्थी शिविर के नजदीक जॉर्डन खुफिया सेवा के अधिकारियों और अन्य दो कर्मचारियों की हत्या हुई थी। सरकार ने इसे चरमपंथी हमला करार दिया था। रुकबान शिविर इराक, सीरिया और जॉर्डन की सीमाओं के मिलने की जगह से 8 किलोमीटर दूर पश्चिम में रेगिस्तान में स्थित है। ये पथरीला इलाका शहर से बहुत दूर है और किसी भी तरह के छांव, पानी और हरियाली से महरूम है। यहां काम कर रहे राहत कर्मियों का कहना है कि यहां के शिविरों में 50,000 से ज्यादा शरणार्थी फंसे हुए हैं, जो बहुत ही दयनीय स्थिति में रह रहे हैं और जॉर्डन में घुसने के इंतजार में है। संयुक्त राष्ट्र के उपग्रह विश्लेषकों के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने के आखिर तक इस इलाके में 6,400 से ज्यादा संभावित बसेरे हैं। जॉर्डन के अधिकारी सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अभी हर दिन सिर्फ 50 से 100 शरणार्थियों को ही अपनी सीमा में घुसने की इजाजत देते हैं। ऐसा माना जाता है कि ज्यादातर शरणार्थी इस्लामिक स्टेट के नियंत्रण वाले पूर्वी प्रांत होम्स और उसके नजदीक स्थित रक्का से भाग कर आए हैं। सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की वफादार सेना ने रूस के हवाई हमलों की मदद से पिछले एक साल में इन इलाकों में सफलता हासिल की है। संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत 4,84,00,000 सीरियाई शरणार्थियों में से 6,55,000 लोगों को जॉर्डन ने पनाह दे रखी है। हालांकि जॉर्डन की सरकार का कहना है कि वहां 10,00,000 से ज्यादा सीरियाई नागरिक रह रहे हैं। इनमें वो भी शामिल हैं जो असद के खिलाफ शुरू हुए विद्रोह से पहले ही जॉर्डन पहुंच चुके थे।
जॉर्डन में कार बम धमाका। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का अहम सम्मेलन दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल में चल रहा है। पाकिस्तान ने भारत के साथ 48 सदस्यों वाले समूह की सदस्यता के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ है। पाकिस्तान का कहना है कि वो भी इतना ही इस ग्रुप में शामिल होने का जायज हक रखता है जितना भारत। लेकिन पाकिस्तान का पक्ष कितना मजबूत है? क्या कुछ कमजोरियां उसके आड़े आ सकती हैं? इस्लामाबाद से हारून रशीद की रिपोर्ट।
माहरीन का कहना है कि आने वाले वक्तों में दुनिया में जोहरी तवानाई के हसूल के लिए रिएक्टर्स, आलात और सामान की मांग में ज़बरदस्त इजाफा देखा जाने वाला है। बाज़ माहरीन के ख्याल में इसी मंडी से मुआशी फ़ायदा उठाने के लिए पाकिस्तान और भारत इस ग्रुप की रुकनियत की दौड़ में शामिल हैं। दोनों ममालिक की कोशिश है कि ना सिर्फ अपनी अंदरूनी ज़रूरियात को हासिल किया जाए बल्कि बैरून मुल्क बरामद भी किया जा सके। सदर अयूब खान ने कनाडा से 1972 में अपना पहला जौहरी रिएक्टर हासिल किया था जो कि कराची में नस्ब है, जिसके बाद पाकिस्तान ने चीन से 2 मजीद रिएक्टर्स हासिल किए। आजकल पाकिस्तान 8 मजीद रिएक्टर्स नस्ब करने के मुख्तलिफ मराहिल में है। अगरचे पाकिस्तान का मौकिफ है कि वो न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप की रुकनीत की तमाम शराइत पूरी करता है, लेकिन उसके नाकेदीन का कहना है उसे अभी खुद अपना एक मकामी तौर पर जौहरी रिएक्टर डिज़ाइन और तामीर करने की सलाहियत हासिल करनी बाकी है। ताहम इस्लामाबाद ने कायम स्ट्रेटिजिक विजन इंस्टीट्यूट के सरबराह डॉक्टर जफर इकबाल चीमा इससे मुत्तफिक नहीं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का सिविलियन जौहरी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का रिकॉर्ड साफ सुथरा है।
पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है ये इतना एक्सपेंडेड नहीं है, लेकिन क्वालिटेटिवली ये कंपेरेबल है। आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई रिपोर्टेड एक्सीडेंट नहीं है इन रनिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। कोई टेररिज्म का पाकिस्तान का न्यूक्लियर फील्ड में कोई इस किस्म की कोई इवेंट नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं उनको भी इंटरनेशनली एक्नॉलेज किया जाता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर है इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के क्रेडेंशियल तो उसमें काफ़ी बेहतर है।
पाकिस्तान पुरामन जौहरी टेक्नोलॉजी तक रसाई के लिए गैर इम्तियाजी और कवायद पर मबनी निज़ाम चाहता है जो उसकी सामाजिक, इक्तसादी और तकनीकी तरक्की के लिए ज़रूरी है। बैन अल-अक़वामी जौहरी इदारे IAEA में पाकिस्तान के 5 बरस तक सफ़ीर की जिम्मेदारियां निभाने वाले अली सरवर नकवी कहते हैं कि जौहरी प्लांट्स की तामीर और बरामद करने की सलाहियत न होने का तासुर दुरुस्त नहीं।
नहीं, ये कोई बात नहीं। पाकिस्तान कैन बी ए सप्लायर स्टेट। पाकिस्तान ने बल्कि IAEA को कहा हुआ है लो एनरिच्ड यूरेनियम सप्लाई कर सकता है। पाकिस्तान पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की जरूरत किसी को नहीं है। प्राइवेट ऑपरेटर हैं जो कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बाहर को सप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान का फुल्ली डेवलप्ड न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल है जो कि बहुत कम ममालिक के पास है।
पाकिस्तान की रुकनियत की दरख्वास्त के खिलाफ दूसरा बड़ा मनफी नुकता बज़ाहिर मैन्युफैक्चरिंग शोबे में सलाहियत का तमाम तर रियासत के कंट्रोल में होना हो सकता है। इसमें कोई निजी शराकत दार या कंपनी मुलविस नहीं है। डॉक्टर जफर इकबाल चीमा इसे दुरुस्त मानते हैं लेकिन कहते हैं कि ये महज पाकिस्तान में नहीं बल्कि भारत में भी यही सूरत हाल है।
ये चीज जो है ये आपकी बात ठीक है, ये यूनिक चीज पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में भी ऐसे ही है। ये डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यादातर ऐसे ही है, इवन चाइना में भी मोस्टली ऐसे ही है। صرف یونائٹڈ اسٹیٹس میں اور ویسٹ میں اور جاپان میں یہ تین ایکسیپشن ہیں جہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو بہت سالوں سے ان چیزوں میں انگیج کیا گیا, بلکہ پرائیویٹ سیکٹر جو پبلک سیکٹر سے آگے ہے, خاص کر یونائٹڈ اسٹیٹس میں آرم پروڈکشن میں, میجر انڈسٹری میں, نیوکلیئر انڈسٹری میں, جیسے جنرل الیکٹرکس ہے یا اور کمپنیز ہیں. لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں یہ چیز نہیں ہے, یہاں پرائیویٹ سیکٹر موجود ہی نہیں ہے, نہ انڈیا میں موجود ہے, نہ ہمارے پاس موجود ہے, نہ چائنا میں پرائیویٹ سیکٹر کو. لیکن میرے نالج میں یہ چیزیں ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں پاکستان کو, انڈیا میں بھی, دونوں ملک کو انگیج کیا جا رہا ہے فار فیوچر ریفرنس, فرام 10 years, فرام 5 years, نو وٹ رول کین پرائیویٹ سیکٹر پلے ان دی جنریشن آف الیکٹریسٹی ٹو
Kind of بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ شاید پاکستان کو اس رکنیت کی ضرورت ان چیزوں تک رسائی کے لیے ہے جو وہ خود تیار یا بیرون ملک سے حاصل نہیں کر سکتا ہے. اگرچہ پاکستان نے 70s کی دہائی میں مبینہ جوہری پھیلاؤ کے بعد سے سخت کنٹرول اپنا رکھے ہیں, لیکن ماضی میں ڈاکٹر عبد القدیر کی تاریخ کو بھلانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. ڈاکٹر ظفر اقبال چیما کہتے ہیں کہ ڈاکٹر قدیر کا دور اب ختم ہو چکا ہے.
تو ڈاکٹر اے کیو خان کی ہسٹری جو ہے وہ اتنی شاید وائلیشن NPT کے یا نان پرولیفریشن رجیم کی نہیں ہے جتنی وائلیشن انڈیا نے کی ہے. انڈیا نے تو 1974 میں ٹیسٹ کیا, جس کو اب انٹرنیشنلی ایکنالج کیا گیا, اٹ واز اے ویپن ٹیسٹ. جس بندے نے کیا, راجا رمانا نے, اس کی بیان ہے اٹ واز اے ویپن ٹیسٹ. پھر اس کے بعد انڈیا نے 98 کے دوبارہ نیوکلیئر ٹیسٹ کیے. تو جتنا فلیگرنٹلی انڈیا نے وائلیٹ کیا ہے نان پرولیفریشن رجیم کو اوپنلی اینڈ پبلکلی, بلکہ چیلنج کیا ہے, پاکستان نے تو کچھ بھی نہیں کیا.
ڈاکٹر ظفر اقبال چیما کہتے ہیں کہ جوہری خرید و فروخت کی دنیا میں ایک بڑی بین الاقوامی بلیک مارکیٹ آج بھی موجود ہے.
نان پرولیفریشن تو ایک بہت بڑا, بہت دنیا میں ایک پوری بلیک مارکیٹ ہے, جس میں پورا ویسٹ انوالو ہے, امریکن انڈسٹری انوالو ہے, جرمنز انوالو ہیں, سوئس انوالو ہیں. اس میں اگر پاکستان نے کوئی اس قسم کی, ایک ہی خان نے کوئی ایکٹیویٹی کی ہے, I think that has been condoned and become a history for a long time.
ماہرین کہتے ہیں کہ چین نے بھارت پر واضح کر دیا ہے کہ اس گروپ کی رکنیت کی شرائط کا اثر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس موقع پر صورتحال ابھی واضح نہیں کہ کیا دونوں ممالک کو رکنیت مل پائے گی یا نہیں, یا یہ معاملہ تعطل کا شکار ہی رہے گا. ہارون رشید, BBC, اسلام آباد.
ریو اولمپک میں روس کے ایتھلیٹوں کے ٹریک اینڈ فیلڈ اسپردھا میں بھاگ لینے کے راستے آج بند ہو گئے. روس پر آروپ ہے کہ اس کے کھیل منترالے نے ویوستھت طریقے سے ڈوپنگ کو بڑھاوا دیا اور اسے چھپانے کی کوشش کی. پورے مسئلے پر آدیش گپت کی رپورٹ.
ایسا اولمپک کھیلوں کے اتہاس میں پہلی بار ہونے جا رہا ہے جب آگامی ریو اولمپکس میں روسی کھلاڑی ٹریک اینڈ فیلڈ اسپردھا میں دکھائی نہیں دیں گے. آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا, اور آج انتراشٹریہ اولمپک سمیتی نے ورلڈ ایتھلیٹکس گورننگ باڈی کے اس نرنے کا سمرتھن کیا جس کے تحت روسی ایتھلیٹوں کے انتراشٹریہ پرتیوگتاؤں میں بھاگ لینے پر پرتیبندھ جاری رکھنے کو کہا گیا تھا. اس کے ساتھ ہی روسی ٹریک اینڈ فیلڈ ایتھلیٹوں کے ریو اولمپکس میں جانے کا راستہ بند ہو گیا. دراصل سال 2014 میں واڈا یعنی ورلڈ اینٹی ڈوپنگ ایجنسی نے سوچی میں پایا کہ ڈوپنگ میں لپت کھلاڑیوں کو سرکار کا سمرتھن حاصل ہے. آج سوئٹزرلینڈ کے لوزان شہر میں انتراشٹریہ اولمپک سمیتی کی بیٹھک تھی, جس سے پہلے اس کے ادھیکش ٹامس باک نے کہا تھا کہ یہ سنشچت کرنا کہ کھیلوں کا ایک حصہ صاف ہو جائے گا بے حد مشکل ہے.
سب سے پہلے میں آپ سبھی کا دھنیواد کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بے حد کم سمے میں ملی سوچنا کے بعد یہاں موجود ہیں, لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بیٹھک کتنی مہتوپورن ہے, جہاں سے ہم اپنے ان پریاسوں میں سمنوے بنا سکتے ہیں جو ایتھلیٹکس کو صاف ستھرا بنانے اور بچانے کے لیے کیے جا رہے ہیں. ہمارے پریاس ہماری اس لڑائی کو مضبوط کریں گے جو وشیش کر آنے والے اولمپک کھیلوں میں ڈوپنگ کے خلاف کیے جا رہے ہیں.
انتراشٹریہ اولمپک سمیتی کے ادھیکش ٹامس باک کے شبد. اب جبکہ یہ صاف ہو گیا کہ روسی ایتھلیٹ ریو سے دور رہیں گے, تو اس کا کتنا اثر ٹریک اینڈ فیلڈ اسپردھا پر پڑے گا ابھی کہنا مشکل ہے. اس سے پہلے روسی ٹینس اسٹار ماریا شاراپوا بھی ڈوپنگ کا شکار ہو کر پرتیبندھ کا سامنا کر رہی ہے. لگتا ہے واڈا نے اس قدم سے پوری دنیا کو کڑا سندیش دے دیا ہے کہ دباؤ کے سہارے پدک جیتنے کا کھیل اب نہیں چلے گا, چاہے وہ کتنا بڑا کھلاڑی اور دیش ہی کیوں نہ ہو.
دن بھر کو یہیں ورام دیتے ہیں. کارکرم آپ تک پہنچانے میں مدد کی تلک راج بھاٹیا نے, ریحان فضل کو سبھی ساتھیوں کے ساتھ اجازت دیجیے. نمسکار.